एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतरने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, शायद थोड़ा असहज भी।
हाँ बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं जैस्मिन चैन के पहले उपन्यास द स्कूल फॉर गुड मदर्स की।
एक ऐसी कहानी जो ये सवाल उठाती है कि एक अच्छी माँ कौन होती है
और ये तय कौन करेगा। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ माँ बनने की आपकी काबिलियत सरकार तय करती है,
और आपकी एक छोटी सी, बस एक छोटी सी गलती
आपसे आपका बच्चा हमेशा के लिए छीन सकती है।
ये कल्पना ही, सच कहूँ तो, डरावनी है। इस उपन्यास को डोमेस्टिक डिस्टोपिया या सामाजिक हॉरर भी कहा गया है।
बिल्कुल, और इसे पढ़ते हुए मार्गरेट एटवुड की द हैंडमेड्स टेल की याद आना बहुत लाजमी है।
हाँ, दोनों ही कहानियां समाज के बनाए नियमों और खास तौर पर औरतों पर उसके असर को बहुत ही भयावह तरीके से दिखाती हैं।
और इसकी लेखिका जैस्मिन चैन एक चीनी अमेरिकी लेखिका हैं। उनकी लिखाई में अक्सर ये चीजें दिखती हैं, सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक उम्मीदें
और मातृत्व का दबाव।
हाँ, और ये उपन्यास 2022 में आया, मतलब एक ऐसे समय में जब हम सब सोशल मीडिया पर वो परफेक्ट माओं की तस्वीरें देखते हैं
और तकनीक हमारी जिंदगी के हर पहलू पर नजर रख रही है।
तो चलिए, आज की हमारी ये गहरी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी, एक अच्छी माँ होने का मतलब क्या है और ये तय करने का हक आखिर किसके पास है।
तो कहानी की जो नायिका है उसका नाम है फ्रीडा लियू। फ्रीडा 39 साल की एक चीनी अमेरिकी महिला है और वो हाल ही में हुए तलाक के बाद अपनी 18 महीने की बेटी हैरियट की अकेली परवरिश कर रही है।
तो एक सिंगल मदर हैं।
जी, और वो अपनी नौकरी, घर और एक छोटी बच्ची की देखभाल के बीच मतलब बुरी तरह फंसी हुई है। नींद पूरी नहीं होती, मदद करने वाला कोई नहीं,
और वो अकेलापन।
हाँ, एक अजीब सा अकेलापन उसे हर वक्त घेरे रहता है। ये एक सिंगल मदर की रोजमर्रा की जद्दोजहद है जिसे समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है।
सही बात है।
और इसी जद्दोजहद के बीच आता है वो दिन जिसे फ्रीडा बाद में एक बहुत बुरा दिन कहती है।
अच्छा।
उस दिन उस पे काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, बेटी उसे सोने नहीं देती और वो मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने की कगार पर होती है। उसे अपने ऑफिस से एक बहुत जरूरी फाइल लानी होती है और उसके पास बेटी को कहीं छोड़ने का कोई विकल्प नहीं होता।
और फिर
हताशा और थकावट के उस एक पल में वो एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है।
वो क्या करती है?
वो अपनी सोती हुई बेटी हैरियट को घर में अकेला छोड़कर चली जाती है।
ओह।
वो खुद को तसल्ली देती है कि बस 2 घंटे की बात है, वो जल्दी से जाकर वापस आ जाएगी। पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी बुरी नीयत से नहीं किया गया था।
ये हताशा में उठाया गया कदम था।
बिल्कुल, ये एक ऐसी माँ का कदम था जो उस वक्त अपनी बर्दाश्त की हद पार कर चुकी थी, लेकिन उसका ये फैसला एक तूफान ले आता है।
और यहीं से कहानी का वो पहलू शुरू होता है जो हमें झकझोड़ देता है, एक पल की चूक और उसकी सजा।
होता ये है कि एक पड़ोसी को शक हो जाता है और वो पुलिस को फोन कर देता है।
अच्छा।
जब फ्रीडा घर लौटती है तो पुलिस वहां पहले से मौजूद होती है, और बस उसी पल से फ्रीडा की जिंदगी अब उसकी अपनी नहीं रहती, वो एक अपराधी बन जाती है, एक बुरी माँ।
ये सुनकर ही बहुत कठोर लग रहा है, मतलब एक गलती जो शायद हजारों लोग करते होंगे लेकिन पकड़ी सिर्फ वो गई।
हाँ, ये समाज के उस दोहरे मापदंड की तरफ इशारा करता है जहाँ माओं से हर पल हर हाल में 100% सही होने की उम्मीद की जाती है।
बिल्कुल, और कहानी में फ्रीडा के पूर्व पति गस्ट का भी जिक्र है।
हाँ, मैं उसी पर आने वाला था। मुझे यकीन है कि अगर कोई पिता ऐसा करता तो शायद बात इतनी नहीं भड़ती। एक घटना के बाद बाल सुरक्षा सेवाएं यानी चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज वो फ्रीडा की जिंदगी पर एक काला साये की तरह छा जाते हैं।
उनका रवैया कैसा होता है?
बेहद ठंडा और अमानवीय। सरकारी अधिकारी उसके घर आते हैं, उसकी हर चीज की छानबीन करते हैं,
मतलब एक अपराधी की तरह।
जी, उससे ऐसे सवाल पूछते हैं, उसकी दलीलें, उसकी थकान, उसका अकेलापन, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके लिए वो बस एक केस फाइल है, एक आंकड़ा है।
ओ।
और बहुत जल्द सबसे बुरा होता है, हैरियट की कस्टडी उससे छीन ली जाती है
और उसके पिता को दे दी जाती है।
हाँ, उसके पूर्व पति गस्ट और उसकी नई पार्टनर सुजैना को।
तो ये सिस्टम जो बच्चों की मदद के लिए बना है, असल में एक माँ को इंसान समझ नहीं बंद कर देता है।
बिल्कुल,
उसके लिए फ्रीडा एक माँ नहीं बस एक केस फाइल बनकर रह गई है। यह तो एक बहुत बड़ी और डरावनी बात की तरफ इशारा करता है। कि कैसे अच्छे इरादों से बने सिस्टम अपने ही नियमों में उलझ जाते हैं।
और ये तो बस शुरुआत है। फ्रीडा पर मुकदमा चलता है और अदालत उसे एक अजीब सजा सुनाती है।
सजा?
उसे अपनी बेटी वापस पाने का एक मौका दिया जाएगा। शर्त यह है कि उसे एक साल के लिए एक सरकारी सुधार गृह में रहना होगा।
एक सुधार गृह?
जी, जिसका नाम है द स्कूल फॉर गुड मदर्स।
अच्छी माओं का स्कूल।
नाम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे डर है कि इसके पीछे की हकीकत कुछ और ही होगी।
आपकी आशंका बिल्कुल सही है। ये स्कूल एक पुराने कॉलेज की बिल्डिंग में बना है, लेकिन इसका माहौल किसी जेल से कम नहीं है।
जेल जैसा?
चारों तरफ ऊंची दीवारें, हर कोने में कैमरे, और माताओं को एक जैसी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। उनकी निजी जिंदगी, उनकी पहचान, सब कुछ छीन लिया जाता है।
और वहाँ भावनाएं दिखाने पर भी पाबंदी होगी? बिल्कुल। रोना, गुस्सा करना या निराश होना, ये सब बुरी माँ होने के लक्षण माने जाते हैं।
बाप रे, तो वहाँ उन्हें सिखाया क्या जाता है अच्छी माँ कैसे बने?
हाँ, लेकिन उनका तरीका बहुत ही अजीब और डरावना है। स्कूल का सबसे भयानक पहलू है वहाँ की तकनीक।
तकनीक?
हर माँ को उसके बच्चे की शक्ल और आदतों वाला एक रोबोट दिया जाता है, एक AI डॉल।
एक रोबोट?
हाँ, फ्रीडा को भी एक AI हैरियट मिलती है, जो बिल्कुल उसकी बेटी की तरह दिखती है, उसी की तरह हंसती और रोती है।
एक मिनट, अपनी ही बेटी के रोबोट से प्यार करना सीखना जबकि आपकी असली बेटी आपसे दूर है? सच कहूं तो ये सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
ये मानसिक प्रताड़ना ही है।
हाँ,
इन माओं का पूरा साल इसी रोबोटिक गुड़िया की देखभाल करते हुए गुजरता है। उन्हें क्लास में सिखाया जाता है कि प्यार भरा स्पर्श कैसा होना चाहिए।
प्यार भरा स्पर्श?
हाँ, गुस्से को कैसे काबू करें और खेलने की कला क्या है। उनके हर काम पर, गुड़िया के साथ उनके हर बर्ताव पर नजर रखी जाती है।
तो उन्हें हर वक्त एक नाटक करना पड़ता है।
बिल्कुल, हर वक्त शांत, प्यार करने वाली और धैर्यवान माँ होने का नाटक, चाहे अंदर से वो कितना ही टूट क्यों न रही हो।
मतलब प्यार और ममता को भी कैमरों की निगरानी में परखा जा रहा है।
हाँ,
तकनीक का ऐसा इस्तेमाल तो किसी भी रिश्ते का दम घोट देगा। उपन्यास में एक बहुत ही कमाल की लाइन है, देखा गया प्यार बदला हुआ प्यार होता है।
सही बात है।
जब आप जानते हैं कि कोई आपको देख रहा है, आपका मूल्यांकन कर रहा है, तो आपका प्यार सच्चा नहीं रह जाता, वो एक प्रदर्शन बन जाता है।
और यही फ्रीडा का सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। वो उस मशीन की गुड़िया से कैसे प्यार करे, ये जानते हुए कि उसकी असली बेटी को पाने का रास्ता इसी झूठे प्रदर्शन से होकर जाता है।
और ये गुड़िया भी कोई आम गुड़िया नहीं होगी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें खास तौर पर माताओं को उकसाने और उनका इम्तिहान लेने के लिए प्रोग्राम किया गया है।
अच्छा, मतलब
वे घंटों बिना वजह रोती हैं, खाना फेंकती हैं और हर वो काम करती हैं जिससे एक माँ का सब्र टूट जाए।
तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। सिस्टम आपको पहले तोड़ता है और फिर अपने सांचे में ढालने की कोशिश करता है।
बिल्कुल।
इस माहौल में फ्रीडा का क्या होता है? क्या वो अकेली पड़ जाती है?
काफी हद तक, लेकिन इस अमानवीय माहौल में भी इंसानियत के कुछ पल मिल ही जाते हैं। फ्रीडा की दोस्ती कुछ दूसरी माओ से होती है, खासकर रॉक्सैन नाम की एक औरत से। वे चोरी छुपे एक दूसरे से बात करती हैं, अपना दर्द बांटती हैं और इस दिखावे की दुनिया में सच्चाई के कुछ लम्हे चुरा लेती हैं।
और क्या उसे अपनी असली बेटी हैरियट से मिलने दिया जाता है?
हाँ, लेकिन वो मुलाकातें और भी ज्यादा तकलीफदेह होती हैं।
वो क्यों?
महीने में सिर्फ कुछ घंटों के लिए और वो भी अधिकारियों की कड़ी निगरानी में। उन मुलाकातों में फ्रीडा को एहसास होता है कि उसकी बेटी धीरे धीरे उससे दूर हो रही है।
ओह, ये तो बहुत दर्दनाक होगा।
बहुत। फ्रीडा को अपनी बेटी के सामने एक अच्छी माँ होने का प्रदर्शन करना पड़ता है, जबकि उसका दिल अंदर से रो रहा होता है।
ये तो प्रदर्शन बनाम सच्चाई की लड़ाई को उसके चरम पर ले जाता है। एक तरफ वो पहचान है जो सिस्टम उस पर थोप रहा है और दूसरी तरफ वो असली इंसान है जो अंदर ही अंदर घुट रहा है। मैं एक बात पर वापस आना चाहता हूँ। स्कूल में जो दूसरी माताएं हैं, वो किस तरह के परिवारों से हैं?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है। उपन्यास दिखाता है कि स्कूल में ज्यादातर माताएं अकेली हैं, गरीब हैं, या फिर अश्वेत या किसी और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।
अच्छा,
आपको वहाँ कोई अमीर ऊंचे तबके की शादीशुदा औरत नहीं मिलेगी।
तो ये साफ दिखाता है कि ये सिस्टम उन लोगों को ज्यादा आसानी से अपना निशाना बनाता है जो पहले से ही समाज के हाशिए पर हैं,
जिनके पास लड़ने के लिए ताकत या पैसा नहीं है।
तो ये सिर्फ मातृत्व का सवाल नहीं है, ये सामाजिक न्याय और भेदभाव का भी सवाल है। सिस्टम ने पहले ही तय कर लिया है कि कौन शक के दायरे में है।
हाँ, और ये अन्याय कहानी के अंत में और भी भयानक रूप ले लेता है। साल के आखिर में अंतिम परीक्षा का समय आता है।
अच्छा?
अब तक फ्रीडा खुद को पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसने अपने गुस्से, अपने दुख, अपनी हर असली भावना को दबा दिया है। वो एक आदर्श माँ का रोबोट बन चुकी है,
सिर्फ इस उम्मीद में कि उसे उसकी बेटी वापस मिल जाएगी।
हाँ, फैसले का दृश्य बहुत तनाव भरा है। एक बड़े से हॉल में सभी माताओं को इकट्ठा किया जाता है, एक एक करके उनका नाम पुकारा जाता है और उन्हें उनका नतीजा बताया जाता है।
और फ्रीदा की बारी आती है।
हाँ, उसने साल भर हर नियम का पालन किया था, हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाई थी, उसे पूरी उम्मीद होती है कि वो पास हो जाएगी।
लेकिन ऐसा नहीं होता है ना?
नहीं, उसे असफल घोषित कर दिया जाता है।
असफल? लेकिन क्यों?
कारण बहुत ही ठंडा और मशीनी होता है। उसे बताया जाता है कि उसके डेटा और मैट्रिक्स के विश्लेषण से पता चला है कि उसमें मातृत्व की सहज प्रवृत्ति की कमी है।
क्या? मातृत्व की सहज प्रवृत्ति? मतलब इतना सब कुछ करने के बाद, अपनी पूरी पहचान मिटा देने के बाद भी एक मशीन, एक एल्गोरिथम ये फैसला करता है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है?
हाँ,
ये तो क्रूरता की हद है।
और इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं है। राज्य फ्रीडा के माता पिता होने के अधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर देता है।
तो वो स्कूल से एक टूटी हुई इंसान बनकर बाहर निकलती है।
एक माँ जिसके पास अब कोई बच्चा नहीं है, उसका एक साल का संघर्ष, उसका प्रदर्शन, सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम ने बेकार साबित कर दिया।
ये अंत कोई उम्मीद नहीं छोड़ता। ये सीधे सीधे उस सिस्टम की क्रूरता को दिखाता है जो इंसानी भावनाओं को सिर्फ आंकड़ों में तब्दील कर देना चाहता है। लेकिन क्या इस हार में भी फ्रीडा कुछ सीखती है?
हाँ, और शायद यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। सब कुछ खोने के बाद फ्रीडा एक बात समझती है जो उस पूरे सिस्टम के तर्क को खारिज कर देती है।
वो क्या?
वो सोचती है, हैरियट कोई समस्या नहीं थी जिसे हल करना था, वो एक इंसान थी जिसे प्यार करना था।
वाह!
भले ही व्यवस्था ने उसे हरा दिया, लेकिन आखिर में वो उस व्यवस्था के अमानवीय तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर देती है। वो अपनी इंसानियत को बचा ले जाती है, भले ही उसे इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मातृत्व कोई प्रदर्शन नहीं है जिसे नियमों और पैमानों पर परखा जा सके,
बल्कि ये गहरा, उलझा हुआ और बहुत ही मानवीय रिश्ता है।
और ये एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि क्या पूर्णता की तलाश में, एक परफेक्ट समाज बनाने की जिद में,
हम अपनी इंसानियत ही खोते जा रहे हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।